स्रोत सूत्र वेदों द्वारा प्रतिपादित या उन पर आधारित कर्मकांड के विधि विधान का निरूपण स्रोत सूत्रों द्वारा किया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों का भी यही विषय है, पर उनके अत्यंत विस्तृत होने के कारण स्रोत सूत्रों में सार रूप से वह सब यागिक विधि विधान दे दिया गया है जो ब्राह्मणों में है, यद्यपि कहीं कहीं उनमें भेद भी पाया जाता है। यागिक कर्म कांड के लिए यज्ञ कुंड में अग्नि का आघान आवश्यक है। यज्ञीय अग्नि तीन प्रकार की मानी गई है, दक्षिणाग्नि, ग्रहपत्य और आह्वनीय। अग्नि का आधान किस प्रकार किया जाए यह प्रतिपादित करने के साथ साथ स्रोत सूत्रों में उन यज्ञों का भी निरूपण किया गया है जिन्हें वैदिक रूप से या विशेष अवसरों पर या विशिष्ट प्रयोजन से किया गया है। अग्नि का आधान किस प्रकार किया जाए यह प्रतिपादित करने के साथ साथ स्रोत सूत्रों में उन यज्ञों का भी निरूपण किया गया है जिन्हें दैनिक रूप से या विशेष अवसरों पर या विशिष्ट प्रयोजन से किया जाता है। मुख्य यज्ञ निम्नलिखित है, दर्श पौर्णमास यज्ञ जो प्रत्येक पक्ष के उपरांत किया जाता था, आज्ञान्याष्ठी अन्न की फसल तैयार हो जाने पर इस यज्ञ से संपादित होने का समय होता था, चातुर्मास यज्ञ 17-12 दिनों में पूर्ण होने वाला यज्ञ, गवामयन पूरे एक वर्ष तक चलने वाला यज्ञ, वाजपेय राजसूत्र, अश्वमेघ, नरमेघ, सोमयाग और सौत्रामणि आदि। इनमें से राजसीय, वाजपेय और अश्वमेघ का संबंध राजा के साथ है। कोई व्यक्ति तभी राजा माना जाता था जब वह राजसीय यज्ञ का अनुष्ठान कर विधिवत राज्याभिषेक करा ले। विशेष अवसरों पर और विशिष्ट प्रयोजनों से किए जाने वाले यज्ञों के अतिरिक्त अग्निहोत्र, बलि, वैश्वदेव, अतिथि यज्ञ, देव यज्ञ और पितृयज्ञ ऐसे महायज्ञ थे। गृहस्थ को जिन्हें प्रतिदिन करना होता था, स्रोत सूत्रों में इन्हीं सब यज्ञों के विधि विधान का संक्षिप्त एवं सूत्र रूप से निरूपण किया गया है। वर्तमान समय में जो सूत्र ग्रंथ उपलब्ध हैं उनकी संख्या अधिक नहीं है। विश्वास तो यह किया जाता है कि वेदों की जितनी शाखाएं थी उतनी ही कल्प वेदांग, स्रोत्र, गृह और धर्म सूत्र भी थे, पर वैदिक साहित्य के अन्य ग्रंथों के समान बहुत से कल्प सूत्र अब अप्राप्य हैं, पर जो उपलब्ध हैं उन सब का किसी न किसी वेद या उसकी शाखा के साथ संबंध माना जाता है। ऋग्वेद के 2 स्तोत्र सूत्र इस समय मिलते हैं, अश्वलायन और शंखायन। अश्वलाय स्तोत्र सूत्र में 12 अध्याय हैं और इसके रचयिता ऋषि अश्वलायन के शिष्य शौनक थे। सांख्यायन स्तोत्र सूत्र में 18 अध्याय हैं और इसका प्रतिपाद्य विषय बहुत व्यापक है। यजुर्वेद के स्तोत्र सूत्र कात्यायन, बौधायन, अपस्तंभ, सत्यासाढ, वैखानस, भारद्वाज तथा मानव हैं। इसमें से कात्यायन स्तोत्र सूत्र का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है और अन्य सबका कृष्ण यजुर्वेद से। स्तोत्र सूत्रों में कात्यायन स्तोत्र सूत्र बहुत प्रसिद्ध है। इसमें 26 अध्याय हैं जिनमें विविध यज्ञों के विधि विधान बड़े स्पष्ट रूप से प्रतिपादित हैं। इस स्तोत्र सूत्र का आधार शतपथ ब्राह्मण है और इसमें प्रतिपादित विधि विधान प्रायः शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ही है। सामवेद की विधि शाखाओं व ब्राह्मणों के भी कतिपय स्तोत्र सूत्र इस समय उपलब्ध हैं। 25 ब्राह्मण का स्तोत्र सूत्र आरसे या मशक है। मशक नाम इसके रचयिता ऋषि मशक के नाम से है। सामदेव की कौथुमी शाखा से संबद्ध लाटायन स्तोत्र सूत्र है और रामायणीय शाखा से संबद्ध द्राहायन स्तोत्र सूत्र। जैमिनीय स्रोत सूत्र का संबंध सामवेद की जैमिनीय शाखा के साथ है। अथर्ववेद का केवल एक स्रोत्र सूत्र इस समय प्राप्य है, जिसे वैतान स्रोत सूत्र कहते हैं। इसमें 8 अध्याय हैं, जिनमें ऋत्विजों तथा यजमान के कर्तव्यों का निरूपण किया गया है। इस स्रोत्र सूत्र का संबंध अथर्ववेद के गोपत ब्राह्मण के साथ है। ऊपर जिन स्रोत्र सूत्रों का उल्लेख किया गया है, उनमें से कतिपय पर अनेक भाष्य भी वर्तमान समय में उपलब्ध हैं। कल्प वेदांग में प्रतिपादित यागिक विधि विधानों को समझने में इनमें बहुत सहायता मिली है। गृह सूत्र, प्राचीन भारतीय चिंतक गृहस्थ आश्रम को सब आश्रमों में प्रधान मानते थे और अन्य सब आश्रमों ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और संन्यास को उसी पर आश्रित समझते थे। इस दशा में यह स्वाभाविक था कि धर्म ग्रंथों में गृहस्थ के कर्तव्यों तथा धर्मों का विशेष रूप से प्रतिपादन किया जाए। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मनुष्य का जीवन मर्यादित रहना चाहिए, इसीलिए अनेक संस्कारों का विधान किया गया है, जिनका प्रयोजन मानव जीवन को मर्यादित करना तथा उच्च आदर्शों को सम्मुख रख कर कर्तव्यों का बोध कराना है। प्राचीन शास्त्रकार यह मानते थे कि मनुष्य का समुचित विकास उन संस्कारों पर निर्भर करता है, जिनका संबंध गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि क्रिया पर्यंत है। ये संस्कार संख्या में 16 हैं, जिनमें गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, उपनयन, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि मुख्य हैं। गृह सूत्र में इनका शास्त्रीय विधि से प्रतिपादन किया गया है। गृहस्थ के लिए जहाँ इन संस्कारों का विधान है, वहाँ साथ ही उन्हें प्रतिदिन 5 महायज्ञ भी अवश्य करने चाहिए। कतिपय अन्य भी ऐसे यज्ञ हैं जिनका संबंध गृहस्थ आश्रम के साथ है। गृह सूत्र इनका भी प्रतिपादन करते हैं। विवाह गृहस्थ जीवन का मूल है, अतः विविध प्रकार की विवाह पद्धतियों का भी इस कल्प वेदांग में प्रतिपादन किया गया है। स्रोत सूत्र के समान गृह सूत्र भी वैदिक संहिताओं, उनकी शाखाओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों से संबंध है। ऋग्वेद के 3 गृह सूत्र वर्तमान समय में उपलब्ध हैं, आश्वलायन, सांख्यायन और कौशितकी। आश्वलायन गृह सूत्र में 4 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय अनेक खंडों में विभक्त हैं। ऋग्वेद के गृह सूत्रों में यह प्रधान है, इसी कारण अनेक विद्वानों ने टीकाएं लिखकर इसके अभिप्राय को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। शुक्ल यजुर्वेद का प्रसिद्ध गृह सूत्र पराशकर गृह सूत्र है, जिस पर अनेक भाष्य लिखे गए हैं। कृष्ण यजुर्वेद से संबंध अनेक गृह सूत्र वर्तमान समय में उपलब्ध हैं, जिनमें बौधायन गृह सूत्र, भारद्वाज गृह सूत्र, आपस्तंभ गृह सूत्र, हिरण्यकेशी गृह सूत्र, वैखानस गृह सूत्र, मानव गृह सूत्र, अग्निवेश गृह सूत्र और काठक गृह सूत्र उल्लेखनीय है। सामवेद के साथ संबंध रखने वाले 3 गृह सूत्र वर्तमान समय में प्राप्य हैं, गोभिल गृह सूत्र, खदीर गृह सूत्र और जैमिनीय गृह सूत्र। अथर्ववेद का एकमात्र उपलब्ध गृह सूत्र कौशिकी गृह सूत्र है। धर्म सूत्र, व्यक्ति का परिवार और समाज के से क्या संबंध रहे और परिवार तथा समाज के अंग के रूप में मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं, इन विषयों का प्रतिपादन धर्म सूत्र संबंधी कल्प वेदांग में किया जाता है। प्राचीन भारतीय चिंतकों के अनुसार मनुष्य का व्यक्तिगत तथा सामाजिक हित व कल्याण वर्णाश्रम व्यवस्था पर निर्भर होता है। मनुष्य का हित इसी बात में है कि वह अपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का पालन करे। धर्म सूत्रों में इन्हीं वर्ण धर्मों तथा आश्रम धर्मों का स्पष्ट रूप से निरूपण किया गया है। राज्य भी मनुष्य की सामाजिकता का ही एक रूप है, अतः राजा और प्रजा के कर्तव्य, दंड विधान, न्याय व्यवस्था और राजकीय कर आदि विषय भी धर्म सूत्रों में निरूपित हैं। मनुष्यों के खान पान, रहन सहन, विवाह, उत्तराधिकार, ऋण और ब्याज आदि भी धर्म सूत्रों की परिधि के अंतर्गत विषय हैं। वर्तमान समय में जो धर्म सूत्र उपलब्ध हैं उनमें गौतम धर्म सूत्र, बौधायन धर्म सूत्र, अपस्तंभ धर्म सूत्र, हिरण्यकेशी धर्म सूत्र, वशिष्ठ धर्म सूत्र, वैखानस धर्म सूत्र और विष्णु धर्म सूत्र उल्लेखनीय हैं। प्राचीन भारत में धार्मिक जीवन का निरूपण करते हुए हम इन सूत्र ग्रंथों का उपयोग करेंगे। सातवां ज्योतिष वेदांग। षड वेदांगों में ज्योतिष भी अन्यतम है। प्राचीन भारत में इस विज्ञान का समुचित विकास हुआ था। यागिक कर्मकांड के लिए भी इसका बहुत उपयोग था, क्योंकि यज्ञों के लिए यह भी आवश्यक समझा जाता था कि विशिष्ट समयों पर ही उनका अनुष्ठान किया जाए। विधि पूर्वक यज्ञ कर सकना तभी संभव है जबकि नक्षत्र, तिथि, पक्ष, मास, ऋतु, संवत्सर आदि का भी ध्यान रखा जाए। जिस ऋतु, मास या नक्षत्र में जिस यज्ञ का विधान है उसी में उसका संपादन करना चाहिए, अन्यथा फल यज्ञ सफल नहीं हो सकता। यज्ञों का अनुष्ठान ठीक समय पर किया जाए इसके लिए ज्योतिष का ज्ञान आवश्यक है, और इसीलिए इस विज्ञान को भी वेदांग के अंतर्गत किया गया है। ज्योतिष विज्ञान बहुत प्राचीन है। ऋग्वेद में भी ऐसे मंत्र विद्यमान हैं जिनसे ज्योतिष के ज्ञान का संकेत मिलता है। एक मंत्र में वर्ष की 12 राशियों की गणना सूचित की गई है। प्राचीन ग्रंथों में सप्तऋषि मंडल के लिए ऋक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में भी सप्तऋषियों के लिए ऋक्ष शब्द का प्रयोग कर यह प्रश्न उठाया गया है कि ये जो ऋक्ष आकाश में बहुत ऊंचे पर स्थित हैं वे रात में तो दिखाई देते हैं पर दिन में वे कहाँ चले जाते हैं। सूत्र या मूल रूप से जो ज्योतिष विज्ञान ऋग्वेद में प्रतिपादित है, ब्राह्मण ग्रंथों के समय में उसका और अधिक विकास हुआ और समयांतर में उसने एक पृथक वेदांग का रूप प्राप्त कर लिया। छांदोग्य उपनिषद के समय तक यह विज्ञान अच्छी उन्नत दशा को प्राप्त हो चुका था। इसीलिए ऋषि सनत कुमार के प्रश्न पर करने पर नारद मुनि ने जब उन विद्याओं को गिनाया जिनका कि वे अध्ययन कर चुके थे तो उन्होंने नक्षत्र विद्या, ज्योतिष और राशि विद्या, गणित का भी नाम लिया था। निरुक्त, कल्प, वेदांग आदि के अनेक ग्रंथों में भी ज्योतिष संबंधों तथ्यों का उल्लेख मिलता है जिनसे प्राचीन काल में इस विज्ञान की सत्ता के संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता। प्राचीन ग्रंथों में उन ऋषियों के भी नाम दिए गए हैं जिन्होंने कि इस विज्ञान का प्रतिपादन किया था। व्यास, वशिष्ठ, पराशर, कश्यप, अत्रि, नारद, आंगिरस, लोमस, भृगु, सौनक आदि ऋषियों की ज्योतिष के विकास का भी श्रेय दिया जाता है, पर इनके ज्योतिष संबंधी कोई भी ग्रंथ वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है। वर्तमान समय में ज्योतिष वेदांग की केवल एक प्राचीन पुस्तिका उपलब्ध है जिसे वेदांग ज्योतिष कहते हैं। इसके दो प्रकार के पाठ हैं जिनमें से एक पाठ का संबंध ऋग्वेद से माना जाता है और दूसरे का यजुर्वेद से। याजुस ज्योतिष में 43 श्लोक हैं और आर्च ज्योतिष की श्लोक संख्या 43 है। बहुसंख्यक श्लोक दोनों में एक सदृश हैं। वैदिक युग में ज्योतिष के क्या सिद्धांत या मंतव्य थे यह जानने के लिए वेदांग ज्योतिष एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह ग्रंथ अत्यंत प्राचीन है और कतिपय विद्वानों ने इसे तो ईसवी सन से 12 और 14 सदी पूर्व के काल में विरचित मानना है। इसके रचयिता का नाम लगध था। लगध कहाँ के निवासी थे और किस कुल में उत्पन्न हुए थे यह सर्वथा अज्ञात है। ज्योतिष के कतिपय अन्य प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख प्राचीन साहित्य में हुआ है, पर ये ग्रंथ वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं हैं। आर्यभट्ट, वराह मिहिर आदि के ज्योतिष संबंधी ग्रंथ बाद के काल के हैं और प्राचीन ज्योतिष वेदांग के अंतर्गत नहीं हैं। आठवां, प्रातिशाख्य। शिक्षा, छंद और व्याकरण, ये तीनों वेदांग वैदिक शब्दों व मंत्रों के उच्चारण, छंदों और व्याकरण संबंधी सामान्य नियमों का प्रतिपादन करते हैं, पर वेदों की बहुत सी शाखाएं हैं और उन विविध शाखाओं की वैदिक ऋचाओं में शब्दों के उच्चारण तथा व्याकरण संबंधी नियमों आदि में अनेक भिन्नताएं हैं। प्रातिशाख्य ग्रंथों की रचना इस प्रयोजन से की गई थी कि वेदों की विविध शाखाओं में शिक्षा, छंद और व्याकरण के जो विशिष्ट नियम हैं उनका निरूपण किया जाए। इस प्रकार प्रातिशाख्यों का संबंध किसी एक वेदांग से न होकर शिक्षा, छंद और व्याकरण इन तीनों वेदांगों के साथ है। ऋक् प्रातिशाख्य के भाष्य के प्रारंभ में प्रातिशाख्य के प्रयोजन को इस प्रकार प्रकट किया जा गया है। शिक्षा, छंद तथा व्याकरण तो समान लक्षणों व नियमों का प्रतिपादन करते हैं, पर विभिन्न शाखाओं में इन नियमों का जो विशिष्ट रूप है उसे प्रकट करना इस शास्त्र का प्रयोजन है, क्योंकि ये शास्त्र विविध वैदिक शाखाओं के विशिष्ट नियमों का प्रतिपादन करते हैं। अतः स्वाभाविक रूप से प्रत्येक प्रातिशाख्य का किसी न किसी शाखा के साथ संबंध है। यद्यपि प्रातिशाख्यों में शिक्षा, छंद और व्याकरण तीनों वेदांगों के विषय प्रतिपादित हैं, पर उनका अधिक संबंध व्याकरण के साथ है, इसीलिए उन्हें वैदिक व्याकरण के ग्रंथ भी कहा जाता है। वर्ण समामन्याय, पद विभाग, संधि विच्छेद, स्वर विचार और उच्चारण आदि पर इन ग्रंथों में विशेष रूप से विचार किया गया है, जिसके कारण वैदिक संहिताओं को शुद्ध रूप से कायम रखने में इनसे बहुत सहायता मिली है। भाषा में निरंतर विकास होता रहता है और शब्दों के उच्चारण में भी समय के साथ साथ अंतर आ जाता है। संस्कृत का चंद्र शब्द बाद में चांद बन गया और निर्भय का निर्भो के रूप में उच्चारण किया जाने लगा। प्राचीन संस्कृत भाषा में भी यही प्रक्रिया हुई। ऋग्वेद के समय वैदिक भाषा का जो स्वरूप था समय के साथ वह पुराना पड़ता गया और संस्कृत भाषा नया रूप प्राप्त करती गई। इस दिशा में वेद मंत्रों और उनके शब्दों के शुद्ध उच्चारण को कायम रख सकना सुगम बात नहीं थी। प्रातिशाख्यों में विशेष रूप से यह प्रयत्न किया गया कि वेद मंत्रों के छंद सही रूप से कायम रहे, उनके उच्चारण में अंतर न आए और स्वरों की शुद्धता बनी रहे। इसीलिए इन ग्रंथों में वेद मंत्रों के संहिता, पाठ, क्रम पाठ, जटा पाठ आदि का भी निरूपण किया गया है, जिससे मंत्रों की शुद्धता के स्थिर रहने में बहुत सहायता मिली। हजारों वर्ष बीत जाने पर भी वैदिक संहिताएं जो शुद्ध रूप में उपलब्ध हैं उसका श्रेय प्रातिशाख्य ग्रंथों को ही दिया जा सकता है। वर्तमान समय में जो प्रातिशाख्य उपलब्ध हैं उनमें से कतिपय का यहाँ उल्लेख करना उपयोगी होगा। ऋक् प्रातिशाख्य इन ग्रंथों में बहुत प्राचीन तथा प्रामाणिक है। इसके रचयिता महर्षि शौनक माने जाते हैं। शिक्षा वेदांग का विषय इसमें विशेष रूप से प्रतिपादित है, अतः इसे शिक्षा शास्त्र भी कहते हैं। यह प्रातिशाख्य 18 पटलों में विभक्त है। पहला पटल शिक्षा प्रकरण है, जिसमें स्वर, व्यंजन, स्वर भक्ति, नाभि, प्रगृह आदि विशिष्ट शब्दों के लक्षण दिए गए हैं। द्वितीय पटल में विभिन्न प्रकार की संधियों का उदाहरण सहित प्रतिपादन है। वैदिक तथा संस्कृत भाषा में संधियों का विशिष्ट स्थान है, इसी से विसर्ग विविध स्वरों में परिणत हो जाता है और व्यंजन द्वित्व रूप प्राप्त कर लेते हैं। स तथा न जैसे व्यंजन संधि द्वारा मूर्धन्य रूप भी ग्रहण कर लेते हैं। ऋक् प्रातिशाख्य के अगले 7 पटलों में इन्हीं विभिन्न संधियों का विशद रूप से प्रतिपादन है। स्वर किस प्रकार उद्दात, अनुदात एवं लुप्त रूप प्राप्त करते हैं और वर्णों के उच्चारण में कौन से दोष हो सकते हैं, इन सब विषयों के निरूपण के पश्चात अंतिम तीन पटलों में वैदिक छंदों का विवेचन किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद का प्रातिशाख्य भी वर्तमान समय में उपलब्ध है, जिसे वाजसनेयी प्रातिशाख्य कहते हैं। इसके रचयिता कात्यायन ऋषि माने जाते हैं। इस ग्रंथ में 8 अध्याय हैं, जिनमें विविध स्वरों के लक्षण एवं विशेषताएं, विभिन्न संधियां, वर्णों का परिगणन तथा स्वरूप और मंत्रों के पद पाठ आदि विषयों का वैज्ञानिक रूप से प्रतिपादन किया गया है। ऋक् प्रातिशाख्य और वाजसनेयी प्रातिशाख्य दोनों में ही अनेक प्राचीन आचार्यों के मत उद्धृत किए गए हैं। ऋक् प्रातिशाख्य में मांडुक्य, मालव्य आदि आचार्यों के मतों का तथा वाजसनेयी प्रातिशाख्य में शाक्तायन, साकल्य और काश्यप आदि आचार्यों के मतों का उल्लेख है, जिससे यह ज्ञात होता है कि इन प्रातिशाख्यों से पहले भी ऐसे ग्रंथों की सत्ता थी जिनमें इन्हीं शास्त्रों का, इन्हीं वेदांगों, शिक्षा छंद और व्याकरण का पृथक वैदिक शाखाओं के अनुसार विभिन्न रूप से प्रतिपादन किया गया था। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय शाखा से संबंध तैत्रीय प्रातिशाख्य है, जो दो प्रश्नों या खंडों में विभक्त है। प्रत्येक प्रश्न में 12-12 अध्याय हैं। इनमें वर्ण, स्वर, शब्द, स्वर, संधि, उच्चारण आदि का विशद रूप से विवेचन है। प्रातिशाख्य साहित्य में इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण स्थान है। साम वेद से संबंध अनेक प्रातिशाख्य वर्तमान समय में उपलब्ध हैं, जिनमें पुष्प सूत्र और ऋक् तंत्र उल्लेखनीय है। पुष्प सूत्र के रचयिता आचार्य वर रुचि थे। इस ग्रंथ में साम वेद के गे सामों का विशेष रूप से प्रतिपादन किया गया है। ऋक् तंत्र का संबंध साम वेद की कौथुम शाखा के साथ है। इसका रचयिता शाक्तायन को माना जाता है और इसमें वैदिक व्याकरण के नियमों को विशद रूप से निरूपित किया गया है। अथर्व वेद के दो दो प्रातिशाख्य उल्लेखनीय है, सौनकिया चतुर्ध्यायिका और अथर्ववेद प्रातिशाख्य सूत्र। सौनकिया चतुर्ध्यायिका के रचयिता के संबंध में मतभेद है। कतिपय विद्वानों के अनुसार उसके लेखक ऋषि सौनक थे, पर अनेक हस्तलिखित प्रतियों में इस प्रातिशाख्य को कौतस व्याकरण भी कहा गया है, जिससे यह परिणाम निकाला जाता है कि इसकी रचना आचार्य कौत्स द्वारा की गई थी। अथर्ववेद प्रातिशाख्य सूत्र बहुत संक्षिप्त ग्रंथ है और इसमें भी उन्हीं विषयों का विवेचन है जो शिक्षा छंद तथा व्याकरण की परिधि में आते हैं। जिन प्रातिशाख्यों का हमने ऊपर उल्लेख किया है, उन पर अनेक भाष्य तथा टीकाएं भी उपलब्ध हैं। विषय को स्पष्ट करने के लिए इनका बहुत उपयोग है। 9 उपवेद। उपवेद 6 वेदांगों के अतिरिक्त प्राचीन समय में 4 उपवेदों का भी विकास हुआ। ये उपवेद निम्नलिखित हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद और गांधर्व वेद। चिकित्सा संबंधी ज्ञान आयुर्वेद के अंतर्गत है। चरक, सुश्रुत आदि आचार्यों ने चिकित्सा शास्त्र संबंधी जो ग्रंथ लिखे थे, वे आजकल उपलब्ध होते हैं, पर ये आचार्य बौद्ध काल में उसके बाद हुए थे। प्राग बौद्ध काल का आयुर्वेद संबंधी कोई ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं होता, पर चरक, सुश्रुत आदि ग्रंथों में अनुशीलन से यह ज्ञात होता है कि उनसे पूर्व बहुत से ऐसे आचार्य हो चुके थे जिन्होंने आयुर्वेद का विकास किया था। उपनिषदों में स्वत केतु नामक एक आचार्य का उल्लेख आया है, जो उद्दालक आरुणि का पुत्र था। यह श्वेत केतु केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं था, अपितु साथ ही प्रजनन शास्त्र और काम शास्त्र का भी पंडित था। ये शास्त्र आयुर्वेद के अंतर्गत थे। श्वेत केतु के समान अन्य भी अनेक विद्वान इस युग में हुए, जिनके प्रयत्न से आयुर्वेद विज्ञान का भारत में विकास हुआ। धनुर्ववेद, शिल्पवेद और गांधर्ववेद पर बाद में बाद के समय में बने हुए अनेक ग्रंथ इस समय उपलब्ध हैं, पर अभी तक कोई ऐसी पुस्तक इन विषयों पर नहीं मिली है जिसे निश्चित रूप से प्राग बौद्ध काल या उत्तर वैदिक काल का कहा जा सके। पर इन विधाओं का उपवेद समझा जाना ही इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि प्राचीन आर्य केवल यागिक अनुष्ठान और ब्रह्म विद्या का ही चिंतन नहीं करते थे, अपितु चिकित्सा, युद्ध विद्या, शिल्प और संगीत आदि लौकिक विषयों का भी अनुशीलन किया करते थे। अन्य विद्याएं वैदिक संहिताओं और उनसे संबंध विषयों के अतिरिक्त अन्य किन विद्याओं का अनुशीलन इस युग के आर्य करते थे, इस विषय में छांदोग्य उपनिषद का एक संदर्भ बहुत महत्व का है। इस उपनिषद के सप्तम प्रपाठक में महर्षि सनत कुमार और नारद का संवाद आता है, जिसमें सनत कुमार के यह पूछने पर कि नारद ने किन किन विषयों का अध्ययन किया है, नारद ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे भगवान, मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन किया है, मैंने पंचम वेद, इतिहास पुराण को पढ़ा है, मैंने पितृविद्या, राशि विद्या, गणित, दैव विद्या, निधि विद्या, खान संबंधी विद्या, वाक्य अर्थात तर्क शास्त्र, एकायन नीति शास्त्र, देव विद्या, ब्रह्म विद्या अर्थात अध्यात्म शास्त्र, भूत विद्या, छत्र विद्या अर्थात युद्ध शास्त्र, नक्षत्र विद्या अर्थात ज्योतिष, सर्प विद्या और देवजन विद्या को पढ़ा है। इस संदर्भ को दृष्टि में रखकर यह निःसंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि शिक्षा, छंद, ज्योतिष आदि वेदांगों के विकास के साथ साथ प्राचीन भारत के वैदिक तथा उत्तर वैदिक युगों में अन्य भी अनेक विद्याओं का विकास हुआ था। समाप्त।